अनिवार्य ओपनिंग नरेशन एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथ सार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
नमस्कार, आज हम एक ऐसी कृति की गहराइयों में उतरने वाले हैं जिसने अमेरिकी साहित्य पर आप कह सकते हैं एक अमिट छाप छोड़ी है, एलिस वॉकर का कालजयी उपन्यास द कलर पर्पल।
जी हाँ, 1982 में आया ये उपन्यास, और देखिए इसने न सिर्फ पुलित्जर पुरस्कार और नेशनल बुक अवार्ड जीता बल्कि एलिस वॉकर पहली अफ्रीकी अमेरिकी महिला बनी जिन्हें फिक्शन के लिए पुलित्जर मिला। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात थी।
बिल्कुल, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये तो जैसे इतिहास का एक टुकड़ा है, भावनाओं का एक पूरा समंदर है। एलिस वॉकर, जिनका जन्म 1944 में जॉर्जिया के मतलब ग्रामीण इलाके में हुआ, वो नागरिक अधिकार आंदोलन से भी काफी गहराई से जुड़ी थी।
हाँ, और उनकी आवाज में वो शोषितों का दर्द, उनका संघर्ष साफ झलकता है।
एकदम, और उन्होंने ये जो वुमेनिज्म की अवधारणा दी ना, वो बहुत महत्वपूर्ण है, खास तौर पर अश्वेत महिलाओं के अनुभवों पर केंद्रित, उनकी शक्ति, उनका ज्ञान, उनका प्रेम, और ये कैसे सभी उत्पीड़ित समुदायों को जोड़ता है।
जी, द कलर पर्पल इसी वुमेनिस्ट नजरिए का एक बहुत ही शक्तिशाली उदाहरण है। हालांकि जब ये छपा तो प्रशंसा तो हुई, पर सच कहूं तो विवाद भी कम नहीं हुए थे।
हाँ, वो अश्वेत पुरुषों के चित्रण को लेकर और हिंसा का जो बेबाक वर्णन था उस पर काफी बहस हुई थी।
बिल्कुल, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ इसकी जो साहित्यिक महानता है, जो मानवीय संदेश है, उसने इसे अमेरिकी साहित्य में एक मजबूत जगह दिला दी।
तो आज हम इसी उपन्यास की परतें खोलेंगे, है ना, इसकी कहानी, पात्रों का सफर, और वो जो केंद्रीय विषय है जो इसे आज भी इतना इतना प्रासंगिक बनाते हैं, उन पर बात करेंगे।
जी बिल्कुल,
तो चलिए कहानी की शुरुआत से ही शुरू करते हैं। इसका अंदाज लिखने का वो थोड़ा खास है ना?
हाँ, बहुत खास। कहानी खुलती है सीली नाम की एक किशोरी के हाथों से, और ये खत वो सीधे भगवान को लिख रही है। जरा सोचिए, उम्र सिर्फ 14 साल और वो अपने सौतेले पिता के हाथों मतलब यौन शोषण का शिकार है।
और वो धमकी कि तुम भगवान के सिवा किसी और को कभी मत बताना, कितनी भयानक चुप्पी, कितना बोझ होगा उस पर।
जी, और यहीं उपन्यास की जो पत्र शैली है, एपिस्टोलरी फॉर्मेट जिसे कहते हैं, उसका कमाल दिखता है। ये खत सिर्फ कहानी नहीं कह रहे, ये सीली की इकलौती पनागाह हैं, उसकी आवाज का अकेला जरिया।
हाँ, पाठक सीधे उसके मन में झांक पाता है ना, उसकी वो बेबसी, वो अकेलापन सब महसूस होता है। ये जो शुरुआती चुप्पी है और फिर आवाज की तलाश, यही तो उपन्यास के मूल संघर्षों में से एक है।
और इसी शोषण के चलते उसके 2 बच्चे भी होते हैं, पर जन्म के फौरन बाद ही उन्हें उसे छीन लिया जाता है, और फिर उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी शादी कर दी जाती है अल्बर्ट जॉनसन नाम के एक विधुर से। कहानी में उसे अक्सर मिस्टर कहा गया है।
मिस्टर, हाँ, ये नाम ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है, जैसे कोई पहचान नहीं, बस एक रुतबा।
वो उसे पत्नी की तरह नहीं देखता है ना,
बस एक नौकरानी या अपनी जरूरतें पूरी करने का साधन।
बिल्कुल, सीली के लिए तो ये शादी जैसे गुलामी का ही एक दूसरा रूप बन जाती है, और वॉकर यहाँ बहुत बारीकी से दिखाती हैं कि सीली का दर्द सिर्फ एक वजह से नहीं है।
सही कहा, वो गरीब है, वो अश्वेत है, और वो एक औरत है। ये तीनों चीजें मिलकर, जिसे आजकल हम इंटरसेक्शनैलिटी कहते हैं, वो उसके उत्पीड़न को जैसे कई गुना बढ़ा देती हैं। एक जटिल जाल है ये।
लेकिन इस अंधेरे में ना उम्मीद की एक छोटी सी किरण तब दिखती है जब सीली की छोटी बहन नेटी उसके पास रहने आती है।
अच्छा, नेटी?
हाँ, नेटी पढ़ी लिखी है और वो सीली को भी पढ़ाना चाहती है। बहनों में बहुत गहरा प्यार है, पर ये खुशी भी अफसोस ज्यादा दिन नहीं टिकती।
क्यों, क्या हो जाता है?
वही मिस्टर, उसकी बुरी नजर नेटी पर पड़ती है, और जब नेटी उसके इरादों का विरोध करती है, उसे झड़कत देती है, तो मिस्टर गुस्से में उसे घर से निकाल देता है।
अरे नहीं, तो बहनें बिछड़ जाती हैं।
हाँ, जबरदस्ती अलग कर दी जाती हैं।
और सीली का अकेलापन जैसे और भी गहरा हो जाता है, उसे लगता है अब सच में दुनिया में उसका कोई नहीं रहा।
उफ, ये तो बहुत ही दुखद है।
सीली की दुनिया तो और भी सिमट गई होगी, लेकिन कहानी में फिर एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ मतलब हिला देता है।
शागेवरी का आनम।
बिल्कुल,
शागेवरी, मिस्टर की लंबे समय से प्रेमिका, एक जानी मानी आजाद ख्याल ब्लूज गायिका। उसका व्यक्तित्व सीली से एकदम अलग है, आत्मविश्वास से भरी, आकर्षक, अपनी शर्तों पर जीने वाली।
और विडंबना देखिए, जब शायक बीमार होकर मिस्टर के घर आती है, तो मिस्टर सीली को ही कहता है उसकी देखभाल करने के लिए।
जी, ये रिश्ता बहुत ही अजीब और कह सकते हैं जटिल है। एक तरफ वो औरत जिसने उसके पति का प्यार या जो भी था वो छीना, दूसरी तरफ शायद पहली इंसान जो सीली को वाकई एक व्यक्ति की तरह देखती है।
हाँ, यहीं से सीली के अंदर कुछ कुछ बदलना शुरू होता है ना।
हाँ, नफरत करने की हर वजह थी, पर फिर भी सीली शक की देखभाल करती है बहुत लगन से, और धीरे धीरे दोनों के बीच एक बड़ा ही अनोखा गहरा रिश्ता पनपने लगता है।
दोस्ती से शुरू होके शायद उससे भी आगे।
हाँ, दोस्ती से शुरू होकर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रेम संबंध तक। शक के जरिए सीली पहली बार बिना शर्त का प्यार महसूस करती है, स्वीकृति, शारीरिक सुख भी। शग उसे सिखाती है कि दुनिया को एक नई नजर से कैसे देखा जाए।
शग एवरी वो सिर्फ एक किरदार नहीं है, वो सीली के लिए एक तरह की उत्प्रेरक है, कैटलिस्ट। वो सीली की सोई हुई आत्मा को जैसे जगा देती है, भावनात्मक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, और हाँ, यौन रूप से भी।
सही कहा, शक की आजादी और सीली की गुलामी, ये विरोधाभास साफ दिखता है, लेकिन यही विरोधाभास सीली के विकास के लिए जमीन तैयार करता है।
और ये सिस्टरहुड, मतलब नारी सुलभ एकजुटता का भी एक बड़ा शक्तिशाली उदाहरण है कि कैसे महिलाएं एक पितृसत्तात्मक समाज में एक दूसरे का सहारा बन सकती हैं, एक दूसरे को उठा सकती हैं।
जी हाँ, और सिस्टरहुड का एक और मजबूत रूप हमें सोफिया बटलर के किरदार में नजर आता है।
सोफिया, हाँ, वो तो बिल्कुल अलग है।
एकदम, सोफिया जो मिस्टर के बेटे हार्पो से शादी करती है, वो दबने वालों में से है ही नहीं। हार्पो जब भी उस पर रौब जमाने की कोशिश करता है, वो डटकर मुकाबला करती है। उसका चरित्र तो जैसे आग का गोला है, प्रखर, बेबाक।
सोफिया प्रतिरोध का प्रतीक है ना, लेकिन उसकी कहानी ये भी दिखाती है कि उस दौर के नस्लीय अलगाव वाले दक्षिणी अमेरिका में खासकर एक अश्वेत महिला के लिए आवाज उठाने की, प्रतिरोध करने की कीमत क्या हो सकती थी। बहुत भारी कीमत।
बिल्कुल, जब मेयर की पत्नी उसे अपनी नौकरानी बनाना चाहती है और सोफिया साफ इनकार कर देती है, तो बात बढ़ जाती है। मेयर उस पर हाथ उठाता है और सोफिया पलटवार करती है आत्मरक्षा में,
और उसका नतीजा?
नतीजा भयानक होता है। उसे बेरहमी से पीटा जाता है, जेल में डाल दिया जाता है, और फिर विडंबना देखिए, उसे जबरन उसी मेयर के घर में सालों तक नौकरानी बनके काम करना पड़ता है।
उफ, उसकी हिम्मत तो काबिले तारीफ है, पर उसका हश्र, वो उस कठोर सच्चाई को दिखाता है कि व्यवस्था के खिलाफ अकेली आवाज उठाने का अंजाम कितना भयानक हो सकता था। उसका वो टूटा हुआ शरीर, दबी हुई आत्मा, प्रतिरोध की सीमाएं और उसकी कीमत सब दिखाती है उसकी कहानी।
कहानी में एक और जबरदस्त मोड़ तब आता है जब सीली और शुक को वो खत मिलते हैं, नेटी के खत, जिन्हें मिस्टर सालों से सीली से छिपाता आ रहा था। ये बहुत बड़ा रहस्य उद्घाटन होता है।
हाँ, क्या पता चलता है उन खतों से? मुझे याद है ये बहुत अहम हिस्सा है।
पता चलता है कि नेटी जिंदा है। वो लगातार सीली को खत लिख रही थी। वो अफ्रीका में मिशनरी बनकर काम कर रही है। और सबसे बड़ी, सबसे चौंकाने वाली बात, सीली के दोनों बच्चे एडम और ओलिविया, जिन्हें वो मरा हुआ समझती थी, वो भी जिंदा हैं।
क्या बात कर रही हैं? बच्चे जिंदा हैं?
हाँ, और वो नेटी के साथ अफ्रीका में ही हैं। उन्हें उसी मिशनरी जोड़े ने गोद ले लिया था जिनके साथ नेटी काम कर रही थी।
इसकी बात होगी, मिस्टर की क्रूरता भी सामने आ जाती है, और ये उपन्यास के दायरे को भी कितना फैला देता है ना, जॉर्जिया के एक छोटे से गांव से लेकर सीधा अफ्रीका तक।
जी,
नेटी के खत कहानी में एक पूरी नई परत जोड़ते हैं हमें, अफ्रीका का जीवन, वहाँ के रीति रिवाज, उपनिवेशवाद का असर, और ये जो अफ्रीकी डायस्पोरा है, मतलब अफ्रीका से विस्थापित लोग, उनका अपनी जड़ों से जुड़ने का संघर्ष, ये सब देखने को मिलता है।
और नेटी की कहानी एक अलग रास्ता भी दिखाती है, शिक्षा के जरिए, ज्ञान के जरिए सशक्त होने का रास्ता। बिल्कुल,
इन खतों के मिलने के बाद सीली में जाहिर है एक बहुत बड़ा बदलाव आता है।
हाँ, ये खत उसके लिए जैसे जीवन रेखा बन जाते होंगे। एकदम, उसे पता चलता है कि दुनिया में वो अकेली नहीं है। उसकी बहन, उसके बच्चे, वो सब उससे प्यार करते हैं। शक का प्यार और नीटी के खतों से मिली हिम्मत, ये सब मिलकर सीली को अंदर से मजबूत बनाते हैं। और फिर आता है कहानी का वो चरमोत्कर्ष, एक पारिवारिक डिनर का सीन।
हाँ, वो मशहूर सीन जहां सीली आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ती है, बरसों की चुप्पी।
सही कहा, सालों का उपमान, दर्द सब सहने के बाद शक के प्रोत्साहन से सीली सबके सामने खड़ी होती है और मिस्टर को उसके दुर्व्यवहार के लिए सीधे सीधे ललकारती है। वो घोषणा करती है कि वो उसे छोड़कर शक के साथ मेम्फिस जा रही है, और उसके वो शब्द, वो तो अमर हो गए हैं।
हाँ, मैं गरीब हूँ,
मैं काली हूँ, मैं बदसूरत हो सकती हूँ, लेकिन मैं यहाँ हूँ। आई एम पोअर, आई एम ब्लैक, आई मे बी अगली, बट आई एम हियर।
क्या ताकत है इन शब्दों में,
है ना? क्या क्षण रहा होगा वो। ये सिर्फ निष्ठा का विरोध नहीं है, ये अपने अस्तित्व का ऐलान है, अपनी गरिमा का दावा है। एक मूक पीड़ित से एक सशक्त महिला बनने का सफर जैसे यहाँ पूरा होता है। ये आवाज की ताकत है, आत्म अभिव्यक्ति की शक्ति का उत्सव है। अपनी सच्चाई कहना ही मुक्ति की तरफ पहला कदम है।
और फिर मेम्फिस जाकर सीली की जिंदगी वाकई पूरी तरह से बदल जाती है। शक के साथ रहकर वो बाहरी दुनिया देखती है, अपना हुनर निखारती है, वो पैंट बनाने का अपना सफल कारोबार शुरू करती है।
अच्छा, वो सिलाई करती थी ना?
हाँ, और बहुत अच्छी। तो वो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनती है और साथ ही भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से भी उसका बहुत विकास होता है।
और मिस्टर का क्या, एल्बर्ट का क्या, वो वैसे का वैसे ही रहता है या उसमें भी कोई बदलाव आता है?
नहीं, कहानी की एक खूबसूरती ये भी है कि उसमें बदलाव की पछतावा की गुंजाइश भी है। सीली के जाने के बाद अकेलेपन में, शायद अपराध बोध से भी, मिस्टर यानी एल्बर्ट धीरे धीरे बदलने लगता है। वो सोचता है, अपनी गलतियों को महसूस करता है। उपन्यास के अंत तक आते आते वो एक बेहतर इंसान बनता है, इतना बेहतर कि वो सीली की दोस्ती और सम्मान का पात्र बन पाता है।
ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये दिखाता है कि कोई भी इंसान पूरी तरह बुरा नहीं होता, बदलाव हमेशा संभव है, चाहे कितना भी वक्त लगे। और सीली, क्या वो वापस आती है जॉर्जिया?
हाँ, सालों बाद सीली जॉर्जिया लौटती है, लेकिन अब वो पहले वाली डरी सहमी सीली नहीं है। वो एक सफल आत्मविश्वासी महिला है। उसका अपना घर है, अपना काम है। और उपन्यास का अंत बहुत ही इमोशनल और संतोष देने वाला होता है।
कैसे?
नेटी अपने बच्चों एडम और ओलिविया के साथ अफ्रीका से वापस आती है, और सालों बाद सीली का अपने पूरे परिवार से, अपनी बहन, अपने बच्चों से पुनर्मिलन होता है।
टेप में देखें, सीली पीड़ित से विजेता, शग मार्गदर्शक उत्प्रेरक, सोफिया प्रतिरोध की कीमत चुकाती हुई मशाल, एल्बर्ट पश्चाताप और सुधार की उम्मीद, और नेटी शिक्षा और दुनिया से जुड़कर सशक्त होने का रास्ता। क्या कमाल के किरदार हैं।
बिल्कुल। और इन किरदारों के अलावा कुछ विषय हैं जो पूरे उपन्यास में लगातार गूंजते रहते हैं, जैसे कि ईश्वर की बदलती हुई छवि।
हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। शुरुआत में सीली एक पारंपरिक सजा देने वाले एक पुरुष जैसे ईश्वर को खत लिखती है, लेकिन शग उसे एक अलग तरह की आध्यात्मिकता से मिलवाती है।
जी, जो प्रकृति में ईश्वर को देखती है, प्रेम में, सृष्टि की छोटी छोटी सुंदरताओं में। शक का वो कहना, मुझे लगता है कि अगर तुम खेत में बैंगनी रंग के पास से गुजरो और उसे देखो ही नहीं, तो भगवान इससे नाराज होते हैं। ये जीवन के रोजमर्रा के आनंदों में दिव्यता खोजने की बात है। बैंगनी रंग, द कलर पर्पल।
बिल्कुल। और शक की वो सलाह भी कि ईश्वर को देखने के लिए तुम्हें अपनी आंखों पर से आदमी को हटाना होगा, ये पारंपरिक पुरुष प्रधान धार्मिक विचारों पर एक सीधी गहरी टिप्पणी है।
हाँ, और सीली धीरे धीरे एक ऐसे ईश्वर की कल्पना करने लगती है जो सजा देने वाला नहीं बल्कि प्रेम करने वाला है, एक साथी है।
भाषा का प्रयोग भी इस उपन्यास की खासियत है ना। एलिस वॉकर ने सीली के खतों में अफ्रीकन अमेरिकन स्थानीय भाषा का जो इस्तेमाल किया है।
हाँ, AAV, अफ्रीकन अमेरिकन वर्नैक्युलर इंग्लिश। ये सिर्फ यथार्थवाद के लिए नहीं है, ये उन आवाजों को सम्मान देना भी है जिन्हें अक्सर साहित्य में जगह नहीं मिलती, जिन्हें हाशिए पर रखा जाता है। ये उस भाषा की अपनी लय, अपनी सुंदरता को स्थापित करता है।
और प्रतीकवाद, जैसे आपने कहा, बैंगनी रंग खुद एक प्रतीक बन जाता है सृष्टि की सुंदरता, जीवन, दिव्यता, जिसे सीली शक की मदद से पहचानना सीखती है।
और हाथ, हैंड्स, वो भी बार बार आते हैं। वो हाथ जो चोट पहुंचाते हैं, मिस्टर के हाथ, फिर वो हाथ जो मरहम लगाते हैं, शक के, नेटी के, और फिर सीली के अपने हाथ जो पैंट सिलकर अपनी आजादी बुनते हैं, सृजन करते हैं।
बहुत खूब। जॉर्जिया के ग्रामीण जीवन और अफ्रीका के बीच का वो विरोधाभास और जो समानताएं हैं, वो भी कहानी को कई परतें देते हैं। उत्पीड़न और मुक्ति के विषयों को अलग अलग संदर्भों में देखने का मौका मिलता है।
कुल मिलाकर द कलर पर्पल एक ऐसी कहानी है जो पाठक को अंदर तक झकझोड़ देती है। ये मानवीय क्रूरता की हद भी दिखाती है और साथ ही मानवीय लचीलेपन, प्रेम और आशा की असीम ऊंचाइयों को भी छूती है।
हाँ, ये हमें सिखाती है कि सबसे मुश्किल, सबसे अंधेरी परिस्थितियों में भी अपने अंदर झांककर और दूसरों के साथ जुड़कर आत्मसम्मान और खुशी को फिर से पाया जा सकता है।
खोया हुआ नहीं रहता सब कुछ।
बिल्कुल, और ये कि मानवीय गरिमा और आपसी जुड़ाव की जो ताकत है वो हर तरह के उत्पीड़न से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होती है।
मुझे नृत्यना का तैदा कौरपेल का स्थायी संदेश यही है कि आत्म खोज और मुक्ति वो अक्सर सामुदायिक प्रेम से और सबसे जरूरी अपनी आवाज को बुलंद करने से ही मुमकिन हो पाती है।
एकदम सही कहा, अपनी आवाज पाना ही शायद सबसे बड़ी जीत है। अनिवार्य क्लोजिंग लाइन, ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।